और वैसे ही ये परीक्षित महाराज के जीवन में क्रोध के जंक्शन को भगवान की इच्छा से इन्होंने जीता नहीं, नहीं तो कभी क्रोधी नहीं होते। ये महान भक्त थे, पांडवों के वंश में थे कि जहां कृष्ण का हमेशा स्पर्श रहा है। कृष्ण इनके साथ सोते थे, खाते थे, बोलते थे, सभी करते थे। उनके वंश में क्रोध कैसे आ जाए? किंतु जब कृष्ण की मर्जी होती है तो ये क्रोध को भक्त भी जीत नहीं सकता। और हम ये ऐसे न करें कि हम क्रोधी हो जाएं और हमेशा न जीतें और कृष्ण को कहें ये कृष्ण की मर्जी है, ऐसे न करें, ये नहीं करना है। साधारण जीव हमारे जैसे क्रोध को न जीतें तो ये तीन चार स्टेप्स उतर कर और नाश हो जाता है उसका। किंतु जो भक्त है हमारे जीवों में भी, वो चुप बैठ जाता है, गुस्सा उसको भी आता है कि ये क्यों ऐसा हो रहा है, किंतु चुप बैठ जाता है, सह लेता है, टॉलरेंस, तरोरी व सहिष्णुना, ये पेड़ के जैसा वो टॉलरेंट हो जाता है। कोई पत्थर फेंके तो कैरी देता है, आम देता है, ये बात है। ये क्रोध का जंक्शन हम चूक गए तो परीक्षित महाराज की जो दशा हुई है वही दशा, उससे भी बहुत बुरी दशा हमारी होती है। क्रोध को जब ये नहीं रोक सके तो जाते जाते इन्होंने मरा हुआ सांप पड़ा था वो लकड़ी से उठाकर और वो संत के गले में डाल दिया, इतना बुरा काम हुआ है। और ये क्रोध का परिणाम है। क्रोध तो अंदर होता है और क्रोध का आविष्कार जब होता है तो कोई भी बुरा काम हम कर बैठते हैं। ये आविष्कार में हमेशा ख्याल रखना है। ये जीव ये शत्रु को कभी जीत नहीं सकते। क्रोधो ही प्रथमो शत्रु नराणाम, ये प्रथम शत्रु है क्रोध जो है, और इसको न जीतने से हमारी बर्बादी हो जाती है। और वैसे ही देखिए परीक्षित महाराज से छोटा काम हो गया, ये बुरा काम हुआ कि उन्होंने जाते जाते क्रोध से उसके गले में डाल दिया। वो कहीं उसके पुत्र ने सुना, वो ब्राह्मण का पुत्र था, वो भी योगी था, उसको किसी ने जाके कहा कि तेरे गले में ये राजा ने सांप डाल दिया तेरे बाप के गले में, वो वहां क्रोधी हो गया हो, और उसके उसने भी सोचा नहीं, उसने भी क्रोध नहीं करना था, किंतु ये क्रोध का बाजार फैलाने में भगवान की मर्जी थी। कृष्ण वॉन्टेड दैट, कृष्ण को चाहिए था ये, और इसलिए क्या किया उन्होंने कि यहां परीक्षित महाराजा क्रोधी हो गए, वहां श्रृंगी क्रोधी हो गया, और दो क्रोध साथ साथ आ जाते हैं तो हमेशा झगड़ा बढ़ता रहता है। वहां उसने पानी को हाथ लगाया, पानी बहुत पवित्र गिना जाता है और पानी में एंटीसेप्टिक क्वालिटीज हैं, इसलिए हम पानी से नहाते हैं। ये हम जब नहा लेते हैं तो हमारे शरीर में कोई चमड़ी का रोग होता नहीं है, नहीं तो ये न नहाए हम, आठ दिन में कोई ऐसी कम्युनिटी है कि जो रोज नहाते नहीं है तो उनके हमेशा चमड़ी के दर्द होते रहते हैं। ये दिन में कम से कम वैदिक संस्कृति से दो बार तो नहाना ही चाहिए, ज्यादा नहीं तो, ये इसलिए करते हैं हम। और पानी से, ऐसे भी हमारे यहां श्रीमंत पुरुष हैं, पार्टीज हैं कि जो दूध से भी नहाए तो पैसा कम ना हो, किंतु दूध से नहाए कोई नहाता दिखता नहीं। कोई है सोना है भाई ब्राह्मण देव, दूध से नहाया जाता है? नहीं तो वामन देव कहेगी दूध से भी नहीं, हम रबड़ी से नहाएंगे। ये नहीं होता, ये हमेशा पानी यूज होता है। और पानी, ये जितना भी पानी है ये सब कृष्ण का चरण उदक है। इसलिए हम परसों हम एक बीच पर गए थे रामनवमी के दिन, तो वहां बेचारे कहीं कहीं से पांच सात बसेस आदमी आए थे वहां बीच पर, और वो गंगा जी समझकर उसमें नहा रहे थे सब। ये गंगा ही है, और गंगा के किनारे पर श्रीमद् भागवतम की चर्चा बड़ी अच्छी होती है, क्यों परीक्षित महाराजा भी गंगा के किनारे पर बैठे थे। ये स्थान बहुत योग्य है, ये हमेशा कथा यहां करते रहे रात दिन, ये कथा शुरू चाहिए। सात दिन में हम क्या कहें, इसमें बहुत कहने की जैसा है। तो जब ये परीक्षित महाराज ने देख लिया, परीक्षित महाराजा को जब वो श्रृंगी पिता के पास गया तो रोने लगा जोर से, तो वो ध्यान में से उठे बिचारे और पूछा उन्होंने कि क्या बात है। तो इस श्रृंगी ने कहा, उन्होंने कहा बहुत बुरा किया है, वो राजा इतना बुरा नहीं था, कर्म हो गया होगा उससे, तो क्या होता हम क्षमा कर देते, क्योंकि भक्त हमेशा फर्गीविंग में रहते, क्षमा करते हैं, किंतु नहीं किया उसने। और ये न करने से क्या हुआ कि उसने सांप दे दिया कि भाई जो सांप इसने मेरे पिता के गले में रखा है वही सांप इसको 7 दिन के बाद काटकर मार देगा इसको। और परीक्षित महाराज का कान पर ये जब बात गई तो इन्होंने कुछ प्रतिकार नहीं किया, सह लिया ये और सब तैयारी करना शुरू कर दी, क्योंकि मृत्यु तो आने ही वाली है कभी ना कभी। और इतना बड़ा सारे गोले का राज था पृथ्वी का, सब छोड़ दिया और गंगा जी पर जाकर बैठ गए और से इनको पूछने लगे साधु संत आए, सभी ने विश्व में सुना कि राजा की मृत्यु 7 दिन के बाद है, और सभी को यह पता चला कि ब्राह्मण का शाप है, इसमें से निकलना बड़ी मुश्किल बात है। ये बर्बादी क्यों हुई, ये कृष्ण की मर्जी थी, किंतु ये क्रोध अटका नहीं सके, और क्रोध नहीं अटका सके इसे ही बर्बादी हुई। शिशुपाल की बर्बादी भी ऐसे ही हुई है। फिर यहां जब हम सोचते हैं तो ये जय विजय नीचे गिरने वाले थे, दोनों को भी शाप दिया था कुमारों ने, उनकी भी बर्बादी ये क्रोध से हुई है, और ये भी क्रोध यहां कृष्ण की मर्जी से हुआ है, क्योंकि ये कृष्ण की लीला है, इनको नीचे भेज देना था। इन्होंने बहुत बार कृष्ण को युद्ध करना झगड़ा करना भी बड़ा अच्छा लगता है, कोई ना हो तो ये खुद की लीला करता है, किसी न किसी से झगड़ा कर लेता है। वैसे ये दो जीवों को वहां से गिर जाना पड़ा, और जब ये पृथ्वी पर आए तो इनको स्थान चाहिए था, और ये दीदी के मन में ये बस गया था ये कि भैया अभी ये चाहिए, और पुत्र प्राप्ति के लिए इसने कश्यप को विनंती की, और जो गर्भ रहा उसमें ये दो जीव जय और विजय आ गए। भगवान ने जब ये देखा कि मेरे पार्षद ये इन्होंने गुनाह किया है, तो भगवान ने कुमारों से क्षमा मांगी कि आप महान संत हो, आप मुझे बड़े प्रिय हो, किंतु ये जो हुआ है ये सब मेरी मर्जी से हुआ है, मैंने ही किया है, और आपने जो श्राप दिया है वो भी मैंने ही आपको सुझाया है, क्योंकि सर्वस्य चाहम हृदय से निविष्टो, ये मेरी मर्जी है। तो कुमारों ने इनको कहा कि भाई हमने ये सोचा नहीं था, किंतु ये सब हो गया है। तो इन्होंने कहा कि फिक्र न करें, किंतु इतना मैं आपको विनती करूंगा कि इनको आप जरूर भेजें दुनिया में, क्योंकि इन्होंने आपका गुनाह किया है, किंतु ये हमेशा 3 जन्म तक ये वहां रहें और हमारे दुश्मन हो जाएं, जिससे रात दिन इनका मन हमारे में ही लगा रहे। शत्रु हो तो उसको हमेशा अन्य शत्रु का ख्याल हमेशा होता है। तो वैसे ये पहले जन्म में हिरण्यक्ष और हिरण्यकशिपु के रूप में ये दीदी के गर्भ में आ गए थे। जब कश्यप ने दीदी को कहा कि भाई ये महान राक्षस हैं और ये देवों को पीड़ा देंगे, तो दीदी को बहुत बुरा लगा पहले, इसे इन्होंने 100 साल तक ये गर्भ रखा है, क्योंकि इनको डर था कि बाहर आ जाएंगे तो सब ये देवों को नष्ट कर देंगे, इसलिए हमेशा ये बहुत केयर लेती थी, किंतु अंत में बाहर आना ही था। और जब इनका जन्म हुआ तो ये पहले से ही राक्षस थे ऑलरेडी, उसमें हिरण्यक्ष तो नाम ही राक्षस था, इसको झगड़ा हमेशा चाहिए था ऑलवेज, और कहीं न कहीं किसी न किसी से झगड़ा कर लो। हमारे में भी हिरण्यक्ष बहुत होते हैं कि उनको चैन नहीं आती, वो झगड़ा करना ही होता है। तो इसने क्या किया कि सबसे झगड़ा कर लिया दुनिया में, कोई बाकी नहीं रहा, तो पर्वत को तोड़ने लगाए हाथ से, सब पर्वत भी साफ कर दिए इसने, ये फीजी साफ कर दिया होता जब भी तो अच्छा था तो ये पर्वत नहीं दिखते यहां, तो इसने सब साफ कर दिया, दुनिया में कोई बाकी नहीं रखा। फिर जब जमीन पे कोई कुछ बाकी नहीं रहा जगड़ने के लिए, तो ये पानी में दाखिल हो गया, दरिया में जाके इसने बड़ा उदम मचाया, वरुण की नगरी में चला गया नीचे, बॉटम ऑफ द सी। वहां वरुण आराम कर रहे थे, वरुण का कहा कि तुम बड़े पावरफुल हो, हमारे से झगड़ा करो। तो उन्होंने कहा भाई देखिए हम अब रिटायर हो गए, अब झगड़ा नहीं करते हम किसी से। उन्होंने सोचा ये काम मोल लू इसे झगड़ा। तो ये बोले नहीं मुझे बताओ फिर किससे झगड़ा करूं। तो बोले देख वो पृथ्वी पड़ी है वहां समुद्र के बॉटम में, पृथ्वी गिर गई थी, तो उसको लेने के लिए वराह आ रहा है, वो बड़ा पावरफुल है झगड़ा करने के लिए अच्छा है, इसको उतना ही चाहिए था, इंटॉक्सिकेटेड हो गया है, नशे में आ गया है, मैं पकड़ता हूं। बोले अब वराह, इसको पता ही नहीं था कि वराह क्या चीज है, तो मैं पकड़ता हूं। बोले अभी मेरी पृथ्वी ये कैसे ले जाता है। ये भाव ये ब्रह्मा ने पहले क्रिएशन में ये फॉरगेटफुलनेस ऑफ द सुप्रीम एब्सोल्यूट ट्रूथ कृष्णा गिव्स अस द फॉल्स ओनरशिप सेंस, हमारे में ये सेंस, ये फॉल्स ओनरशिप कि मेरा है, मेरा मेरा करते एक दिन वो आकर के सो जाता है, और जब वो मेरा कुछ नहीं रहता, जब वो शरीर भी नहीं ले जा सकता, ये सत्य हकीकत है। किंतु जब तक हम जिंदा हैं तो ताला, ताले के ऊपर चाबी, चाबी के ऊपर तिजोरी, तिजोरी की चाबी, और वो मेरे पास है कि नहीं जेब में, देख ले कहां है वो, नहीं मिले तो रात भर बैठेगा, ये दीवानापन आ जाता है, क्योंकि मेरा 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 हो जाता है। और ऐसा हो जाए तो अंत में बहुत तकलीफ होती है। तो इसको भी बिचारेगा ऐसा ही हुआ था, ये हिरण्याक्ष हो, तो उसने देखा कि वराह आ रहा है वो पृथ्वी के लिए, क्योंकि ब्रह्मा ने प्रार्थना की थी, कि ब्रह्मा ने भगवान से प्रार्थना की, जब ब्रह्मा ने इनके पुत्र को मनु को, स्वयं मनु को आज्ञा दी थी कि भाई आप प्रजा बढ़ाएं, तो मनु ने प्रार्थना की कि भाई ब्रह्मा जी आप प्रजा बढ़ाने के लिए तो कह रहे हो, किंतु प्रजा उत्पन्न हो जाए तो मैं उनको कहां रखूं, रखने के लिए कोई जगह नहीं है। तो ब्रह्मा जी ने देखा कि बात सच है, रहने के लिए मैंने कोई व्यवस्था नहीं की है, और जो पृथ्वी का गोला है वो समुद्र के नीचे पड़ा है, गर्भोदक ओशन के नीचे है, तो कुछ न कैसे वैसे करके इसको निकालना होगा, नहीं तो प्रजा कहां रहेगी, उसको स्थान रहने के लिए नहीं है। तो जब ब्रह्मा ने भगवान की प्रार्थना की, भगवान ने भी देख लिया कि ये ब्रह्मा के हाथ में नहीं है, और ब्रह्मा महान भक्त हैं, तो इनका मान लिया कृष्ण भगवान ने, और मान लिया, और ये इनके नाक से निकल पड़े वराह के रूप में, ब्रह्मा के नाक से, ये बात ही कर रहे थे वहां इनके नाक से इनका अवतार हुआ, और बहुत छोटा था, ये अंगूठे के जैसा भी नहीं था, इतना छोटा था, ये देखते देखते पत्थर के जैसा हो गया, फिर बाद में हाथी जैसा हो गया। तो ब्रह्मा जब भी पहचान गए कि भाई यही भगवान है, और ये वराह के रूप में आए, बड़े अच्छे दांत थे पृथ्वी को उठाने के लिए, और ये पहले ही चले गए समुद्र में, और वो पृथ्वी के नजदीक जाते थे उठाने के लिए, वहां ये हिरण्यक्ष खड़ा था, क्योंकि इसको झगड़ा करना था, तो ये झगड़े लिए तू पहले वहां टच न करना, पृथ्वी मेरी है, बोले तो पहले हम युद्ध कर लेंगे। तो उन्होंने कहा भाई देखिए युद्ध करने का ये स्थान नहीं है, पानी के अंदर युद्ध नहीं होता, तेरे को युद्ध करना है तो ऊपर आ जा। तो इन्होंने पृथ्वी दांत के ऊपर रखी, और वो पृथ्वी लेकर और ऊपर पानी के सतह पर आए ऊपर, और इन्होंने खुद की अंतःशक्ति से पृथ्वी को पानी पर रख दी, और फिर हिरण्यक्ष से झगड़ा किया। ये पृथ्वी जहां से दांत से उठाई थी, ये दो दांत के सरोवर अभी भी मैंगलोर करके साउथ इंडिया में जगह है, केरला के नॉर्थ में, बिल्कुल हम साउथ इंडिया में चले जाएं तो हम मैंगलोर के नजदीक, ये उडुपी करके जगह है, आपने सुना होगा कोई साउथ इंडियन होगा यहां तो उडुपी कृष्ण कहते हैं। ये कृष्ण बहुत प्रसिद्ध है, आप कहीं भारत में जाएं तो अवश्य उडुपी जाएं। ये उडुपी में जो कृष्ण मंदिर है वहां कृष्ण की मूर्ति, और कृष्ण जी के दर्शन के लिए एक बहुत ही हल्का आदमी, अछूता आदमी, कि जिसको छूते नहीं थे पहले, तो वो बहुत बड़ा भक्त था, उसको कृष्ण के दर्शन करने थे, किंतु ब्राह्मण कम्युनिटी उसको मंदिर में आने नहीं देती थी। तो ये मूर्ति को दर्शन देना था उसको, तो मूर्ति ने ऐसे मुंह घुमा लिया है और पीछे के दीवार में बड़ा सुराख है और वहां से उन्होंने ये भक्त को दर्शन दिए हैं। वो कृष्ण अभी भी वैसे ही हैं, मंदिर आगे है और मूर्ति ऐसे घुमाई हुई है। तो ये उडुपी है और उडुपी के नजदीक एक इस्कोन वालों ने एक बड़ी संस्था वहां खड़ी की है और जो ये संस्था की है ये सब ये दांत के जहां निशानात है वो पर्वत में है। ये सभी देखिए जो भगवान की लीला हुई है ये सब भारत के ही प्रदेश में हुई है अभी तक, और कहीं अवशेष मिलते नहीं है। और वहां दो सरोवर हैं और इन सरोवर से तुंगभद्रा नाम की बहुत बड़ी नदी साउथ इंडिया की शुरू होती है यहां से। कहने का मतलब ये है कि ऊपर आ गए तो हिरण्यकश्यप खड़ा ही था, बहुत गहरा युद्ध हुआ और फिर बाद में कैसे वैसे हिरण्यकश्यप का वध कर लिया गया। अब हिरण्यकश्यप का जब विवाद हुआ तो हिरण्यकश्यप जय था और विजय हिरण्यकश्यप में खड़ा ही था। ये बात जब हुई तो बिल्कुल इसके हिरण्यकश्यप को पसंद नहीं आई कि विष्णु ने कैसे मार दिया मेरे भाई को। जब दुष्ट लोग होते हैं वो खुद का गुनाह कभी नहीं देखते, नेवर, खुद का कभी गुनाह नहीं देखते ये, किंतु दुश्मन ने इनको क्या किया है वो हमेशा ये देखते रहते थे। जब कंस को कृष्ण ने मार दिया, खसे उसको खसीड लिया नीचे मंच पर से और वहां उसकी छाती पर बैठ के मुक्के से उनको उसको खत्म कर दिया, और कंस जरासंध का जवाई था, अस्थि और प्राप्ति कंस की पत्नियां, ये जरासंध राजा, ये मगध देश है हमारा जो अभी बिहार कहा जाता है, और ये बिहार में जरासंध के वंशज हैं अभी भी। आप भी बिहार से हो मेरे ख्याल से, ये जरासंध है साहब, तो ये अभी भी कलकत्ते में गाड़ियां, कलकत्ते से रेलगाड़ियां कलकत्ता स्टेशन से दिल्ली जाती है, तो दिल्ली जाती है उनको बिहार से पास होना पड़ता है। पटना, पटना है शहर, कैपिटल सिटी है बिहार की, तो ये कम से कम नहीं तो 200-300 माइल का एरिया, 200-300 किलोमीटर का एरिया बिहार में से होता है। वो गाड़ियां साल में से 10-12 टाइम वहां लूटी जाती है, अब बिल्कुल सलामत नहीं रहती। हम कहते हैं कि भाई अभी भी जरासंध का कोई रूप वहां है। यहां फिजी के जो लोग हैं बिहार के, ये फिजियन है, तो जरासंध मिट गया है यहां फिक्र न करें। तो जब कंस को मार दिया और लड़कियां पिता के यहां चली गई, क्योंकि वैदिक संस्कृति में जब पति का अकाल मृत्यु होता है और भाई या पिता होते हैं तो लड़कियां हमेशा भाई और पिता का आधार लेती है। तो ये बिचारी मां गई और पिता को कहा कि भाई कृष्ण ने कैसे उसको खत्म कर दिया। इसने कंस की कोई बुरी बात नहीं सोची जरासंध ने, और सभी दोष कृष्ण का है ऐसे मान लिया। ये दुष्ट लोगों की वृत्ति होती है, और ये जब मान लिया इसने ये कृष्ण का ही दोष है, तो कृष्ण मथुरा जी में थे तो इसने बड़ी 17 अक्षौहिणी सेना लेकर, बहुत बड़ी सेना लेकर और मथुरा जी पर चढ़ाई कर दी, और कृष्ण जी तैयार भी नहीं थे, उनको पता भी नहीं था कि जरासंध इतनी बहुत बड़ी सेना लेके आएगा, किंतु कृष्ण के लिए स्वयं कोई बात बहुत मुश्किल नहीं होती। इन्होंने जभी शस्त्र के बिना ये सब सेना साफ कर दी थी बाहर आकर, मथुरा जी के बाहर आकर। जरासंध इतना तंग आ गया कि सब सेना खत्म हो गई और जरासंध को इन्होंने अकेला छोड़ दिया। तो जब जरासंध को छोड़ दिया तो इसने सोचा कि मेरी सब सेना चली गई है, राज्य में भी कोई है नहीं, इतने सब लोग मारे गए हैं, मैं ऐसे करता हूं, मैं हिमालय पर चले जाता हूं अब, और बस हम तपश्चर्या करेंगे, अब दूसरा कुछ नहीं करना है। किंतु जरासंध जब जाता था तो उसके कुछ फ्रेंड्स थे, मित्र थे, अरे उन्होंने कहा तू इतना बहादुर आदमी है, एक बार हारने से क्या होता है, कभी दुर्भाग्य होता है तो हार आ जाती, लड़ने वाले को ही तो हार होती है, तू तो बड़ा शक्तिमान है, हिम्मत रख और समाज सेना जमा कर ले और चढ़ाई कर दे, कृष्ण कितनी बार झगड़ेगा, कभी ना कभी तो हार जाएगा। इसको भी ऐसा हुआ, हाँ ये बात बराबर, मैं इतना महान राजा हूं, मेरा इतना बड़ा राज है, और जाके इसने ट्राई किया। जब इसने और चढ़ाई की मथुरा पर तो उतनी ही सेना से लाकर की, तो बलराम जी ने कृष्ण को कहा कि देखिए अब पहले युद्ध के जैसी भूल ना करना कि उसने उसको आपने छोड़ दिया था, ये जरासंध को ही खत्म कर दो तो बात ही खत्म हो जाए। कृष्ण के कहे तेरे को पता नहीं है मैं कोई मूर्ख नहीं हूं, ये जरासंध जो है ये मेरा एजेंट है। ये बलराम ने कहा वो काहे का एजेंट है तेरा? बलराम जी बड़े गुस्से हो गए, काहे का एजेंट, दिमाग है ठीक है, क्या काहे का एजेंट? तो बोलिए तुझे पता नहीं है ये हमारा एजेंट है, ये सब पापियों को जमा लेके करके मेरे सामने खड़ा कर देता है, मैं एक ही बार साफ कर देता हूं, नहीं तो मुझे हर घर जाना पड़े, फिर मेरी तकलीफ कम कर देता है। खैर बलराम जी मान गए, तो 17 बार इसने चढ़ाई की जरासंध ने, उतनी ही सेना लाकर, और कृष्ण जी हमेशा साफ करते रहे, फिर भी वो थका नहीं जरासंध, 17 साल तक चढ़ाई करता रहा हमेशा, फिर तैयारी करने लगा 18 बार आ जाए। तो जब दुष्टों को कोई साथ भी मिल जाता है, बहुत बार हो जाता है कृष्ण की योजना से, तो एक काल यवन करके राजा था, उसने भी देखा कि मथुरा का राज्य बड़ा सदन है, ये मुझे भी मिल जाए, जरासंध को थोड़ा देंगे और नहीं तो मैं जरासंध को हरा दूंगा बाद में। ऐसे करके वो काल यवन और जरासंध दोनों भी चढ़ाई करने के लिए आ गए। जब दोनों वहां चढ़ाई करने के लिए आ गए तो कृष्ण जी ने देखा कि ये तो भारी सैन्य लेकर आए हैं, पहले यादवों को कहीं रखना पड़ेगा। तो सोचा इन्होंने कि कहां रखें इनको, पहले सलामत रख दें फिर बाद में देखेंगे क्या। तो कृष्ण जी ने सोचा कि कहीं बहुत अच्छी जगह सलामत जगह में जाकर और इनको रख दूं। तो वहां से ये द्वारका की तरफ आए हैं और द्वारका जब बसाकर और ये सब सारे यादव इनके जितने भी रिश्तेदार थे मथुरा जी में उनको लेकर और द्वारका में इन्होंने भी सब बसाया, सब पोरबंदर से लेकर सोमनाथ से लेकर सब दरिया किनारे पर ये अभी भी यादव हैं वहां बसे हुए द्वारका तक। तो इतनी भी जमीन इनको कम हो गई। फिर बाद में कृष्ण जी ने दरिया को विनंती की, दरिया को इन्होंने रिक्वेस्ट की कि भी कैसे वैसे कर और 100 माइल हमारे को जमीन दे दे। तो ओशन हैड टू एग्री, ओशन ने जब दरिया ने इतनी जमीन इनको दे दी और वहां बड़ी फर्स्ट क्लास फोर्ट में द्वारका नगरी इन्होंने खड़ी की थी और सब रिश्तेदारों को वहां पहुंचाकर और कृष्ण और बलराम वापिस मथुरा आ गए थे। जब ये मथुरा आ गए तो वहां बड़ी भारी सेना सब खड़ी थी। कृष्ण ने सोचा अब इसको साफ नहीं करूं और कोई दूसरा रास्ता ढूंढ लेंगे। तो कृष्ण जी निकले बाहर मथुरा जी के बाहर और इन्होंने चलना शुरू कर दिया। तो ये बड़े भाग रहा है, ऐसा कर रहा है वैसा कर रहा है करके कृष्ण और बलराम दोनों भी चलते चलते आगे, जरासंध भागने लगा इनके बीच। जरासंध भागता था और कृष्ण जी चलते थे किंतु इनका ये पकड़ नहीं सका, जरासंध इनको पकड़ नहीं सका, ये खाली चलते थे जरासंध भगवान। ये जीव की दशा है कि जीव कितना भी करे तो ऐसे कृष्ण पकड़े नहीं जाते, खाली भक्तिया माम अभी जाना थी, ये भक्ति से ही पकड़े जाते हैं। ये दुष्टों को भी दिखते हैं कि ये जा रहे हैं, किंतु दुष्ट इनको छू नहीं सकते, इसलिए जीवों ने हमेशा भक्ति करनी होती है। तो ये चले आगे चले आगे चले आगे, तो इसके बाद बहुत आगे चलने के बाद एक बहुत बड़ा पर्वत आया, उस पर ये दोनों चढ़ गए। चढ़ गए तो गालियां देता था जरासंध पीछे पीछे कि ये क्या कर दिया, ये क्या कर दिया, भाग गए, छुप गए, डर गए मेरे से, ऐसा हो गया वैसे हो गया। तो ये ऊपर गए, जरासंध ने सोचा कि ये पर्वत में, ये ऐसे सोचकर ऊपर हिस्से को इसने आग लगा दी। इसने सोचा कि कृष्ण और बलराम दोनों भी जल कर खत्म हो जाए। कृष्ण जी कुछ भी कर सकते थे, ये दूसरी बाजू में ये कूद पड़े थे नीचे, इनको कूदना या कहीं जाना ये बहुत आसानी की बात है। तो ऐसे इन्होंने जरासंध को वैसे ही हरा दिया था, जरासंध वैसे ही आदमियों को लेकर निकल गया था। इसके बाद में यानी ये बता, ये क्या बात है कि कितना भी हम प्रयत्न करें कृष्ण के सामने तो कभी हम कृष्ण के सामने जीत नहीं सकते। इनकी योजना अलग अलग होती है, इनकी लीला हमेशा अलग अलग होती है। वैसे ही यहां हिरण्यक्ष ने भी बहुत प्रयत्न किया, किंतु हिरण्यक्ष के आगे भी हिरण्यक्ष इतना पावरफुल होने के बाद भी ये कृष्ण जी को वराह के रूप में ये हरा नहीं सका था। बाद में हमेशा जब कृष्ण बात करते थे तो इतना ये पावरफुल राक्षस था कि हमेशा कृष्ण कहते थे कि ये बहुत महान राक्षस था, इसको हराने के लिए बहुत तकलीफ हुई थी, कृष्ण को भी बड़ी तकलीफ हुई थी इसे, किंतु भगवान ने इसका नाश किया था। तो जब दीदी का ये पहला पुत्र का नाश हुआ तो ये बड़ी दुख में हुई थी, बहुत ही दुख में थी। कश्यप भगवान आ गए थे कि उन्होंने देखा कि आश्रम ऐसे कैसे हो गया है, तो पूछा कि भी क्या बात है। तो इन्होंने इसके संतोष के लिए ये बात इसको बता दी थी कि तू फिक्र मत कर, ये दूसरा जो है थोड़ा हिरण्यकशिप, इसको भी यही हालत देखनी पड़ेगी, किंतु इसका जो तेरा जो ग्रैंडसन होगा हिरण्यकशिप का पुत्र, वो बहुत महान भक्त होगा और सारी दुनिया इसको हमेशा फॉलो करती रहेगी। तो ये सुनकर दीदी को बड़ा अच्छा लगा कि हो ना हो मेरे वंश में एक भक्त आने वाला है। ये देखिए ये माता के संतोष का कारण है। हमेशा हमेशा हमारे कुटुंबों में कोई ना कोई भक्त होता है। इतनी फैमिलियां हमारी होती है लंबी कि काका मामा होते हैं, माँ के साइड में होते हैं, बाप के साइड में होते हैं, यानी ये सब इसमें कहीं न कहीं एक भक्त अवश्य हो जाता है और ये कृष्ण की कृपा है। हमारी फैमिलियां अभी तक भी आपको, मुझे पता नहीं है आपको याद है या नहीं, किंतु हमारे जितने कुटुंब हैं इनके सबके गोत्र हैं और ये गोत्र से हम सप्तर्षि के ऋषियों से जुड़े हुए और ये सप्तर्षि है वो ब्रह्मा से जुड़े हुए हैं। ऐसे हमारा हमेशा ब्रह्मा संप्रदाय, ब्रह्मा से हमारा संबंध होता है। और प्रभुपाद जी ने हमें बड़ा आसान बताया है कि जिसको गोत्र याद नहीं होगा और तलाश करने से भी पता नहीं चलता है, कोई बुजुर्ग आदमी हो तो वो जरूर जानते होंगे गोत्र, और न जाने कोई तो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इसके पीछे आप लग जाए और आपका गोत्र कश्यप गोत्र हो जाए। ये गोत्र में प्रहलाद महाराज का जन्म हुआ है। ये जब दीति ने सुना तो बहुत आनंद हो गया उसको और इसने सोचा कि खैर हिरण्यकशिप का तो जो होने वाला होगा वो होगा ही, किंतु मुझे इतना आनंद है कि मेरे गोत्र में एक महान भक्त होगा और इसमें इसको इतना संतोष हुआ कि इसने दूसरे दुख सब सह लिए हैं। फिर इसके बाद ये हिरण्याक्ष के पुत्र थे, उनको भी बहुत दुख होता था, हमेशा जो राक्षस के पुत्र होते हैं इनको अभिमान बड़ा होता है क्योंकि समृद्धि इनके पास बहुत होती है, राक्षसों के पास हमेशा समृद्धि होती है और पैसा ज्यादा होने से ये दुर्गुण भी इतने ज्यादा करते हैं। तो ये हिरण्याक्ष का बड़ा पुत्र था, उसका नाम उत्कच था, ये बहुत जुल्म करता था क्योंकि इसको पता था कि मेरे बाप बहुत शक्तिशाली है। ये होने से इसको मद आ गया था और मद आ जाता है वहां कृष्ण भाग जाते हैं। इनका नाम है मद न और मोह न, मदन मोहन, मदन मोहन कृष्ण का नाम है। ये दो मार्ग है इनको पहुंचने के लिए, कृष्ण जी के पास जाना हो हमें तो वो मदन मोहन कहला जाते हैं, मद न और मोह भी न। जिसको मद और मोह नहीं होता है वो मदन मोहन के पास जाता है और मदन मोहन के पास जाने के बाद भी मदन मोहन बड़ा कंजूस है, वो हमें आने नहीं देता। इतना भी हम कर ले कि हमारे मद न हो और मोह न हो तो भी मदन मोहन की कृपा होती नहीं है, वो हमें नंद नंदन के पीछे लगा देता है। ये मदन मोहन कहता है ये मेरा काम नहीं है, तू आया है मेरे पास बराबर है किंतु तुझे नंद नंदन के पास जाना चाहिए। जब हम नंद नंदन के पास जाते हैं तो इसका बड़ा अच्छा वर्णन दसवें स्कंध में किया है कि आदव नकार परतो नकार मध्य नकार हतो दकार। बड़ा अच्छा समझ ली, ये नंद नंदन तो पहले न है बाद में भी न है तो नहीं नहीं है ना, और बीच में भी नहीं, और द यानी देना, नहीं देता हूं नहीं देता हूं नहीं, तो दो न है वो दो द काट देते हैं और तीसरा न रह जाता है। तो ये नंदन है ये नहीं नहीं कहता है, मता मता मता। फिर ये कहता है कि कोई जीव ऐसा होता है कि भाई मैं जाने के लिए रेडी हूं मगर मुझे पैसा चाहिए, वेल्थ। ये हमेशा दूसरी कोई चीज मांगते नहीं है, अहैतुकी अप्रतिहता, ये भागवत धर्म की रीत है कि भाई सवे पुंसाम परो धर्मो भक्ति अधोक्षजे। हमारा ये धर्म है, हमारा ये पवित्र धर्म है कि हमें भक्ति चाहिए, और कैसी अहैतुकी, कोई हेतु नहीं है हमारा ये भक्ति में, और अप्रतिहता कभी ये अटकती नहीं है, ये हमेशा होती रहती है। हमारे काम में भी भक्ति होती है, जो काम करने होते हैं वो भी तो हम जीवों के साथ काम करते हैं तो वो भी भक्ति से काम होते हैं, और जहां जरा आत्मीयता का संबंध होता है तो काम करने वाले भी काम अच्छा करने, जहां आत्मीयता संबंध ना हो तो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट हो जाता है, 9 बजे आए 4 बजे चले जाएं 3 बजे ही जाने का सोच लें, ये है। तो ये आत्मीयता हमेशा ये भक्ति का गुण है कि आप यदि एक दूसरे को नहीं चाहोगे तो आप कृष्ण को कैसे प्रेम कर सकोगे। हमारे संबंध सभी से अच्छे चाहिए। परीक्षित महाराजा को जब पता चला कि 7वें दिन मेरा मृत्यु होने वाला है तो हमने देखा कि वो सब छोड़कर और गंगा किनारे चले गए और उन्होंने ऋषियों को कहा कि भी आप लोग मुझे कहो मैं क्या करूं, किंतु मेरी जो इच्छा है मैं वो आपको बताता हूं। देखिए सुखदेव स्वामी जब तक आए नहीं थे उससे पहले परीक्षित महाराजा ने उनकी इच्छा कही है। बड़ा अच्छा श्लोक है ये, यहां याद रखना है कि सुखदेव स्वामी में आने के बाद इन्होंने भागवत का ज्ञान दिया है किंतु परीक्षित महाराजा जन्म से पहले से ही ये भक्त थे और इन्होंने ये श्लोक में बड़ी अच्छी इच्छा प्रकट की है कि पुनश्च भूयात भगवती अनंते, ये पहली लाइन, पुनश्च भूयात भगवती अनंते, कि कभी मुझे आना ही पड़े वापस ये दुनिया में, क्योंकि मेरी भक्ति पूरी नहीं हुई है तो मैं जरूर यहां आऊंगा ही। तो इतना करें प्लीज कि पुनश्च भूयात भगवती अनंते, मेरा मन हमेशा अंत अनंत भगवान में लगा रहे। ये पहली बात इन्होंने मांगी कि भाई इतना करें मुझे भगवान कि आप में ही मेरा मन रहे, इतनी कृपा मेरे पर करना। फिर दूसरी लाइन में बड़ी अच्छी बात मांगी है, रति ही प्रसंगस्य तदाश्रयेषु, रति मेरा आकर्षण, मेरा अट्रैक्शन, प्रसंगस्य संग ने फ्रेंडशिप, अने प्रसंग यानी आध्यात्मिक फ्रेंडशिप होती है। जो लोग आध्यात्म मार्ग में स्पिरिचुअल में लगे हुए हैं उनका जो संग होता है वो प्रसंग कहा जाता है। संग शब्द हम जानते हैं, संग यानी एसोसिएशन, प्रसंग का हमें ख्याल नहीं है। क्यों? हम एसोसिएट कर लेते हैं, पर किसी भी साथ भी हम एसोसिएट कर लेते हैं। परीक्षित महाराज ने कहा नहीं, मुझे प्रसंग चाहिए। रति ही प्रसंगस्य तद आश्रयेषु, तद यानी वो लोग के आश्रयेषु कि जिन्होंने तेरा आश्रय लिया है, ऐसे ही लोगों से मेरी एसोसिएशन हो। ये दूसरी बात मांगी और तीसरी बात मांग रहे हैं। और देखिए, पहली बात हमने देख ली कि पुनश्च भूयात भगवती अनंते, रति ही प्रसंगस्य तदाश्रयेषु, और तीसरी बात इन्होंने कहा कही है कि महत्सु याम याम उपयामि सृष्टे। महत्सु याम याम, महत्सु यानी ये दुनिया में, ये मटेरियल मैनिफेस्टेशन में कहीं भी मेरा जन्म हो, महत्सु याम याम सृष्टिम, कि कभी में कहीं भी मेरा जन्म हो तो मैत्रेस्तु सर्वत्र, सबसे मेरी मैत्री हो, कोई मेरा दुश्मन न हो। नमो द्विजय भया ब्राह्मणों, आपको मैं नमन करता हूं, मगर मेरी इच्छा ये पूरी करिए कि मेरा मन आना भी पड़े, जन्म लेना पड़े, तो कोई मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। और ये आने ही वाला है, क्योंकि मेरी भक्ति पूरी नहीं हुई है, मैंने पाप किया है। ये ऋषि के गले में सांप डालकर मैंने महान पाप किया है और मुझे जन्म लेना ही पड़ेगा। तो इतना ही करें कि दूसरे जन्म में भी मेरा नाम, मेरा मन भगवान में ही रहे। दूसरी बात है कि हमेशा एसोसिएशन भक्तों का ही रहे, और जहां कहीं भी मैं जन्म लूं, महत्सु महत्सु याम याम उपयामि सृष्टिम, कहीं भी मेरा जन्म हो तो मैत्रेस्तु सर्वत्र नमो दिजभ्य, हमेशा मेरी मैत्री ऐसे लोगों से और सभी लोगों से मेरी मैत्री होते। इसको भागवत की भाषा में अजात शत्रु कहते हैं कि हमेशा शत्रु न हो कोई, कोई शत्रु हो जाए तो भी उसके चरण हम छू लें कि भाई ये नहीं चाहिए, क्योंकि ये बातें सब हमें अटका देती हैं। भक्ति का जो समय है वो ये बातें खा जाती है, तो हमें तो समय का उपयोग भक्ति में करना है। देखिए, हम लोग व्यापारी हैं, हमारा बिजनेस है सभी जगह, तो जो बिजनेसमैन होते हैं वो दूसरा कुछ नहीं करते, कुछ कहीं भाग नहीं लेते, कुछ नहीं करते, एक पैसा कमाते रहते, दैट्स इट। ये हमारा कैसा लक्ष्य एक होता है, और वो पैसा कमाने के लिए किसी को हम चरण भी छूना पड़े, किसी को कुछ भी कहना पड़े, तो हम कर देते हैं वो क्योंकि हमारा लक्ष्य क्या है कि भाई व्यापार करना है। तो ये लक्ष्य जैसे हमने एक वस्तु पर केंद्रित किया है, वैसे ही ये भक्ति का केंद्रित करना है कि जो भी कुछ है, जो सुख प्राप्त हमें हो रहा है भगवान की कृपा से, उसमें हमारा मन रात दिन भगवान में लगा रहे, और ये दूसरे की दुश्मनावट, किसी के ऊपर ये करना, किसी के ऊपर करना, वो हमारे को नहीं चाहिए। उसमें हमारे अमूल्य जो जीवन है, मनुष्य जीवन, इसकी बर्बादी होती रहती है। और इतना मांगा है परीक्षित महाराजा ने, ये सब बातें हमने समझनी है। ममोत्तम श्लोक जनेशु सक्यम संसार चक्रे भ्रमतस्व कर्म भी, ये कहा है। देखिए एक वृत्रासुर करके राक्षस है, ये कह रहा है कि ममोत्तम श्लोक जनेशु सक्यम, ममा उत्तम श्लोक जनेशु सक्यम, मेरा सख्य मेरी फ्रेंडशिप ये उत्तम श्लोक जन ये भक्त जन से ही रहे, और इसमें महान लाभ है। क्योंकि जितनी देर हम ये संग कर रहे हैं यहां, इतनी देर आप लोग टेलीविजन में से बच गए, नहीं तो न जाने क्या देखते रहते। ये मम उत्तम श्लोक जनेशु सक्यम का ये उपयोग है, नहीं तो ग्लास तोड़ते रहते, बोतल तोड़ते रहते। नहीं बोतल टूटती है? नहीं, कोई है बहादुर? नहीं नहीं है, बोलना नहीं, बताना नहीं। ये बात है कि समय की बर्बादी करने में हम बहुत होशियार हैं। ये समय की बर्बादी अटक जाए और भगवान की भक्ति बढ़ जाए, कब हम ये सोचेंगे? When are you going to think about it? कब करेंगे हम? ये श्रीमद् भागवतम की शिक्षा है, और ये इतने उदाहरण हमने देखे हैं, इसी में सग में सब में ये भक्ति का ही प्राधान्य है। भक्ति की तरफ मन होने से परीक्षित महाराजा ने भी मरने का भी जोखम स्वीकार कर लिया है। और एक छोटा बुरा काम हुआ था, देखिए वो हमारी ये फोटो के कैमरे में फिल्म आती है, हम पिक्चर लेते हैं उसका, तो वो 35 मिलीमीटर की बहुत छोटी फिल्म होती है, अगर उसको मैग्नीफाइंग ग्लास में जब मैग्नीफाइंग मशीनरी में रख देते हैं एनलार्जिंग, तो इतना बड़ा पिक्चर टेबल पर आ जाता है। वैसे ही है, काम छोटा होता है बुरा, हमें लगता है क्या है, इतना ही किया है, दूसरा क्या किया। छोटा जब होता है, समय जब जाता है, तो एनलार्ज हो जाता है। और ये परीक्षित महाराजा का काम, बुरा काम भगवान की मर्जी से हुआ था, ये इतना एनलार्ज हुआ कि अंत में खत्म हो जाना पड़ा। ये एनलार्जमेंट है, कोई छोटी छोटा पाप नहीं है। कोई भी बिल्कुल जरा सा भी पाप हमारे हाथ से हो जाए तो ये महान है। तो जब महान पाप करते हैं तो उसकी दशा क्या होती होगी? हमारे समय की बर्बादी ना हो, रात दिन हमारे मन में भगवान बस जाए, इतना हमारे मन में हो जाए तो हम जीत जाएं, नहीं तो हार है। ये दुनिया में हार न लें। जो भगवान के मनुष्य होते हैं, जो भगवान के भक्त होते हैं, इनको पराजय कभी नहीं होता है, कभी नहीं, क्योंकि वाचा पर हमेशा हरि होता है। और भगवान हो हरि शरणम एवं ही एशाम नित्यम मुखे वचा, हरि शरणम जो कहता है कि मैं हरि की शरण हूं, तो हरि आपके दुख सब दूर कर देता है। हरि शरणम एवं ही एशाम मुखे नित्यम वचा काल समाधिष्ठा जरा न बाध्य दे क्वचित, उसको वृद्धत्व भी नहीं आता है। जिसके मुंह में हमेशा हरि का शरण हो उसको भी वृद्धत्व भी नहीं आता है। आ गया है तो भी इसका आधार लेकर हम हमारी तबीयत बड़ी अच्छी रख सकते हैं। हमेशा तबीयत का सवाल हमारे सामने खड़ा होता है, कोई ना कोई पीड़ा हमारे पीछे लग जाती है। जैसी उम्र होती है, खाना पीना हम कंट्रोल नहीं कर सकते, क्योंकि पहले 25 साल के थे तो 5 किलो खा जाते थे, तो अभी भी कहता है मैं अब 70 साल का हुआ तो 25 का 5 है तो 70 का 15 होना चाहिए, ऐसे करके वो हम ज्यादा लेते थे। किंतु जैसे एडवांस उम्र हो वैसे ये टंग का कंट्रोल चाहिए, ये भागवत का विषय है। कि ये फिर ये टंग ये जीवा ये भगवान के नाम के लिए है, ये प्रसाद खाने के लिए नहीं है। ये है जितना कम लोगे उतना ये भूमि का हिस्सा हमारे शरीर में कम जाएगा, नहीं तो जो हम प्रसाद लेते हैं वो सॉलिड होता है। ये भूमि है, ये गेहूं के रूप में भूमि है, चावल के रूप में भूमि है, दाल के रूप में भूमि है, सब्जी के रूप में भूमि है, और हमारा जो शरीर है इसमें 70% वाटर है, 70% पानी है, पानी का ज्यादा भाग है इसमें। तो पीना है पीने से भी चल सकता है, किंतु भूमि हम जितनी ज्यादा डालें उतनी जड़ता आ जाती, लेजीनेस आ जाता है, और जहां लेजीनेस आ जाए वहां हम हमारे काम भी नहीं कर सकते। तो ये शास्त्रों का अभ्यास तो कैसे हो, और अभ्यास ना हो तो मन कृष्ण में लगे नहीं, मन हमारा भक्ति में दृढ़ हो नहीं। इतना सोचकर आज हम यहां पूरा करेंगे। कल हम हिरण्यकशिपु उसके भाभी जी को, माता को और भाई के बच्चों को कैसे शांत करता है वो देखेंगे और आगे